लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। दुष्ट नहीं समझते कि न्याय क्या है। प्रभु की खोज में लगे रहने वाले लोग उसे अच्छी तरह से समझते हैं। कपटी धनी व्यक्ति की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अधिक अच्छा है। संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। जो ब्याज और सूदखोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वालों के लिए एकत्र करता है। जो संहिता पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के 5 से लेकर 9 तक के पदों में निहित शब्द। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 28वें अध्याय में राजा सुलेमान के कथनों की एक लंबी सूची जारी की गई है। इसमें शासकों और नेताओं के कई संदर्भ मिलते हैं। यह अध्याय धार्मिकता, न्याय, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के बारे में निर्देश देता है। इस अध्याय के दूसरे भाग में अधर्मी शासकों के प्रभाव और अराजक नेतृत्व और सांस्कृतिक पाप के बीच पारस्परिक संबंध का उल्लेख मिलता है। दुष्ट सरकारें भय और विच्छिन्नता को प्रेरित करती हैं। इस अध्याय के अन्य नीति वचन लालच के खतरों के बारे में है। एक बार फिर लेखक भौतिक धन का पीछा न करने का परामर्श देता है, क्योंकि आम तौर पर यह भयानक परिणामों की ओर ले जाता है। इस प्रकार 28वें अध्याय में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि दुष्ट तरीकों से चलने वाले लोगों को लगातार भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके खुद के दोष और पाप के प्रति जागी चेतना उन्हें आतंकित करने लगती है। वे जहां भी जाते हैं उन्हें उनका पाप काटता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपना शत्रु बना लिया है। वे ईश नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि अपने दुख दर्दों के लिए ईश्वर को ही दोषी मानते हैं, मानो संपूर्ण सृष्टि और पूरी दुनिया उनके विरुद्ध हो। ऐसे लोग कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं होता, साहस नहीं होता, बल्कि न्याय की भयभीत प्रतीक्षा रहा करती है। श्रोताओं, मूल रूप से बुरे या दुष्ट लोग न्याय को अथवा न्याय के सिद्धांतों को नहीं समझते तथा न्याय के सिद्धांतों को खुद पर लागू नहीं करना चाहते। एक प्रकार से उनके दिमाग स्वाभाविक रूप से अंधे हो गए हैं। वे अपने पूर्वाग्रहों और जुनूनों में ही सिमट कर रह गए हैं तथा न्याय की परवाह नहीं करते। इनके विपरीत वे लोग हैं जो अनवरत ईश्वर की तलाश में लगे रहते हैं, अर्थात भलाई की तलाश करते हैं और न्याय की तलाश करते हैं। ऐसे लोग विनम्र होते हैं, जिनके लिए बहुत सी अस्पष्ट चीजें सरल हो जाती हैं। लेखक कहता है कि कपटी धनी व्यक्ति की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अधिक अच्छा है। श्रोताओं, गरीबी से बदतर चीजें हैं बेईमान पुरुष या महिला। व्यक्ति का चरित्र उसके आचरण से परखा जाता है, न कि उसके धन से। व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, यदि वह अपने धन पर घमंड करता है, यदि वह अपने से गरीब व्यक्ति को नीचा मानता है, यदि वह उस पर अत्याचार करता है सिर्फ इसलिए कि उसके पास धन दौलत है, तो उसकी धन संपदा कोई काम की नहीं। मन से वह गिरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि पाप और दुष्टता मनुष्य को कायर बना देते हैं, जबकि ईश्वर पर भरोसा, विश्वास और श्रद्धा सुख, शांति और आनंद का स्रोत होता है।
ईश्वर तू है दया का सागर, मेरी प्रार्थना सुन।
ईश्वर तू है दया का सागर, मेरी प्रार्थना सुन।
आगे 28वें अध्याय के 7वें पद में लेखक कहता है, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। श्रोताओं, आज्ञाकारिता बुद्धिमता का प्रमाण है। जो लोग विवेकशील या बुद्धिमान होने का दावा करते हैं लेकिन फिर भी मूल रूप से अवज्ञा की स्थिति में रहते हैं, वे अपनी मूर्खता दर्शाते हैं। दावत उड़ाने वाले पेटुओं की संगति पिता को और संपूर्ण परिवार को शर्मिंदा करती है, इसलिए लेखक का परामर्श है कि ऐसे लोगों की संगति न की जाए। वस्तुतः खान पान में अपना सब कुछ उड़ाने वाले बेवकूफ होते हैं। वे जीवन, भोजन और प्राप्त शिक्षा का अपमान करते हैं और इस कारण अपने परिवार को शर्मिंदा करते हैं। श्रोताओं, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमें मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। मूर्खों के सदृश व्यवहार कर अपनी मान मर्यादा को कदापि न खोएं। यही इस नीति वचन का संदेश है। आगे लेखक कहता है, जो ब्याज और सूद खोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है। जो संहिता पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। यहाँ इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि कुछ लोग आर्थिक हिंसा के माध्यम से अमीर बनते हैं। वे उच्च और अनुचित ब्याज लेकर धन बटोरते और अपनी शक्ति का उपयोग धोखाधड़ी, चोरी और जबरन वसूली के लिए करते हैं। सूदखोर गरीब कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर दया का दिखावा करते हैं। यह दर्शाता है कि वह उसकी मदद करता है किंतु अपने धन का चौगुना या उससे भी अधिक वापस ले लेता है। वह उसे लूट लेता है, उसके साथ छल करता है। ऐसे सूदखोरों की मूसा की संहिता में भी निंदा की गई है। ऐसे लोगों की प्रार्थना भी घृणित है। उनकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती, वह केवल एक दिखावा मात्र है। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को सुनने या सम्मान देने के लिए बाध्य नहीं जो ईश वचन की उपेक्षा करते हैं। प्रार्थना के लिए आवश्यक है विनम्र हृदय से ईश वचन को सुनना तथा उसे अपने जीवन पर अमल करना, अन्यथा हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को सुग्राह्य नहीं होंगी। फिर 28वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जो धर्मी को कुमार्ग पर ले जाता वह स्वयं गड्ढे में गिरेगा, किंतु निर्दोष व्यक्ति को सुख और शांति प्राप्त होगी। श्रोताओं, 28वें अध्याय के 10वें पद में यह स्पष्टतः कहा गया है कि बहकाने वालों का विनाश होगा, जो भले लोगों को पाप और शरारत में फंसाने का प्रयास करते हैं, जो धर्मी लोगों को बुरे मार्ग पर भटकाने में गर्व महसूस करते हैं, उन्हें जाल में फंसाकर ताकि वे उनका अपमान करें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि ऐसे प्रलोभनकर्ता खुद ही अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर जाएंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में भी ऐसे लोगों की कड़ी निंदा की गई है जो दूसरों को कुमार्ग पर ले जाते हैं। प्रभु येसु कहते हैं, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। इस प्रकार श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय की 3 बुनियादी विशेषताएं हैं, प्रभु का भय, आध्यात्मिकता और कौशल। प्रभु का भय अर्थात ईश्वर और उनके नियमों के प्रति आज्ञाकारिता, और ईश वचनों के प्रति गहन सम्मान एवं अपार श्रद्धा, जो मनुष्य को अवश्य ही सुख शांति से जीने की गारंटी देती है।
ईश्वर तू है दया का सागर, मेरी प्रार्थना सुन।
ईश्वर तू है दया का सागर मेरी प्रार्थना सुन। हसी उड़ाते लोग मेरी, पराया समझा भाई मुझे, अपनी माता के पुत्रों में बन गया हूँ मैं परदेसी।
ईश्वर तू है दया का सागर मेरी प्रार्थना सुन।
ईश्वर तू है दया का सागर मेरी प्रार्थना सुन। क्योंकि तेरे घर का उत्साह ज्यादा मुझको खा जाता। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं, मेरी निंदा करते हैं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने यहूदी विरोधी भावना को समाप्त करने के लिए डिजिटल जिम्मेदारी और शिक्षा का आह्वान किया है। यूरोप में यहूदी विरोध एक दीर्घकालिक मुद्दा रहा है, जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो यहूदी समुदायों के लिए भारी कष्ट का कारण बना है। इस चिंता के बीच परमधाम पीठ ने जोर दिया है कि शिक्षा, जागरूकता और तकनीकी का जिम्मेदार प्रयोग आज भी विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहे खतरों को समाप्त करने में प्रमुख सहायक घटक है। नोदिया देशों के प्रेरितिक राजदूतावास के सचिव फादर डोमिनिको वितोलो ने 11 फरवरी को यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE क्षेत्र में यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने परमधाम पीठ के इस विश्वास को व्यक्त किया कि यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ तब तक कोई भी प्रभावी प्रतिबद्धता नहीं हो सकती जब तक कि समस्या का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन न किया जाए और शिक्षा के माध्यम से यहूदी समुदायों के प्रति सम्मान की भावना विकसित न की जाए। उन्होंने कहा, केवल उचित शैक्षणिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही यहूदी विरोधी भावना और भेदभाव का प्रभावी एवं स्थायी रूप से मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अज्ञानता, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता हमारे समाज में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा हमारे समाज और विशेषकर बच्चों और युवाओं को सभी लोगों की मानवीय गरिमा की रक्षा करने की साझा जिम्मेदारी के बारे में जागरूक बनाकर उनके खिलाफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकती है। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के युग में यहूदी विरोधी सामग्री सहित घृणित बयानबाजी तेजी से और अक्सर गुमनाम रूप से फैलती है। वैटिकन ने व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। फादर वितोलो ने कहा, डिजिटल युग से बहुत पहले से ही यहूदी विरोधी अभिव्यक्तियां मौजूद थीं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग से एक मौलिक प्रतिमान बदलाव को जन्म दिया है। वास्तव में सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी सामग्री के वैश्विक दर्शक हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के माध्यम से आसानी से वायरल हो सकते हैं। परमधाम पीठ के बयान में कहा गया है कि कंटेंट क्रिएटर अपनी पहचान छिपा सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो AI के कारण और भी बदतर हो गई है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी उत्पन्न कर सकती है जो सच जैसी होती है। फादर विटोलो ने कहा कि साइबर घृणा और AI जनित गलत सूचनाओं से लड़ना केवल उद्योग के पेशेवरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, मानव गरिमा को नुकसान पहुंचाने के बजाय उससे बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी तथा हिंसा के बजाय शांति को बढ़ावा देने के लिए समाज को इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु सक्रिय कदम उठाना चाहिए। वैटिकन वेधशाला के निदेशक की नवीनतम पुस्तक में व्यक्तिगत चिंतन के साथ साथ खगोल विज्ञान के साथ यीशु संघियों के जुड़ाव का विस्तृत इतिहास भी सम्मिलित है। वैटिकन वेधशाला के निदेशक ब्रदर गाय कोंसोलमानियो ने सितारों के लिए जेसुइट गाइड नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित की है। 4 फरवरी को प्रकाशित यह पुस्तक खगोल विज्ञान के साथ यीशु संघियों के जुड़ाव के लंबे इतिहास को दर्शाती है। ब्रदर कोंसोलमानियो पुस्तक के प्रस्तावना में लिखते हैं, यह एक ऐसी कहानी है जिसकी उत्पत्ति जेसुइट धर्म संघ के शुरुआती दिनों में हुई थी। यीशु संघ के संस्थापक संत इग्नासियस लोयला ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि सबसे बड़ी सांत्वना जो उन्हें मिली वह आकाश और सितारों को देखने से थी, और ऐसा वे अक्सर एवं काफी लंबे समय तक करते थे। इसके बाद कहानी 19वीं सदी के इतालवी जेसुइट और खगोल शास्त्री अंजेलो सेची और एक प्रसिद्ध जेसुइट कवि एवं प्रतिभाशाली शौकीय खगोल शास्त्री जेराल्ड मार्ले हॉपकिंस के साथ आगे बढ़ती है। यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने कोंगो में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। M23 विद्रोहियों द्वारा पुनः हमला शुरू करने के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हिंसा बढ़ने के कारण यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने मानवीय तबाही से बचने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया है। कोंगो गणराज्य में 2 दिन लड़ाई नहीं होने के बाद M23 विद्रोहियों ने मंगलवार की सुबह सरकारी बलों पर अपने हमले फिर से शुरू किए। M23 विद्रोही तुत्सी जनजातियों की रक्षा करने का दावा करते हुए पिछले महीने उत्तरी कीवू की राजधानी गोमा पर कब्जा करने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ गए हैं। उस हमले में हजारों लोग मारे गए और 24 क्षेत्रीय नेताओं द्वारा युद्ध विराम के आह्वान के बावजूद विद्रोही अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। दक्षिणी कीवू में बुकावो अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं, स्कूल और व्यवसाय बंद हैं और कई नागरिक इलाके से भाग रहे हैं। इस बीच रिपोर्ट बतलाती है कि M23 विद्रोही गोमा के पश्चिम में एक विस्थापन शिविर में घुस गए और वहां रहने वाले लोगों को 3 दिनों के भीतर वहां से चले जाने का आदेश दिया। दल ने इनसे इनकार करते हुए दावा किया है कि निवासी स्वेच्छा से मुक्त स्थानों में सुरक्षित घरों में लौट रहे हैं। हालांकि अधिकांश विस्थापित लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कोंगो में हिंसा के कारण 6.7 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें उत्तर और दक्षिण केवू सबसे अधिक प्रभावित हैं। नवीनतम हमलों ने केवल इस वर्ष 5 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में मजबूर कर दिया है। यूरोपीय संघ के मॉन्सिनियोर क्रोशियाता ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने और सहायता तक पहुंच की गारंटी देने का आह्वान किया है। पोलिन आकिनी जुमा ने 2020 में रीबर्थ ऑफ ए क्वीन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी और यौन एवं लिंग आधारित हिंसा से पीड़ितों एवं बचे हुए लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। एक महिला ने अपने दर्द और पीड़ा की कहानी को सशक्तिकरण और संवाद की कहानी में बदल दिया। बचपन में यौन और घरेलू हिंसा से बचने के बाद पोलिन आकिनी जुमा ने रीबर्थ ऑफ ए क्वीन की स्थापना की, जो यौन और लिंग आधारित हिंसा तथा मानव तस्करी से बचने वालों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।